الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس خطبے اور دعاؤں کے ساتھ جو ہے ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. رشتے داریاں نبھانا، یعنی ریلیشن شپ مینجمنٹ، جو کہ امور خانداری میں حسن انتظام کا جو موضوع چل رہا ہے اس میں سے ایک بیان ہے، یا ایک جو ہے اس کا ذیلی موضوع ہے، سب ٹائٹل ہے رشتہ داریاں نبھانا. تو اس میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ عورت کی زندگی کا یہ ایک کمزور پہلو دیکھا گیا ہے کہ وہ نبھا نہیں پاتی ہے کچھ رشتہ داریوں کو، اگرچہ کہ اللہ رب العزت نے عورت کو کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ جو کہ اس کو اس کام کے لیے بہت زیادہ مدد کرتی ہیں، امپاور کرتی ہیں رشتہ داریوں کو نبھانے میں. ٹھیک ہے، وہ کیا صلاحیتیں ہیں؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کا پہلو بہت زیادہ دیا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے محبت اور الفت کی صلاحیت بہت زیادہ دی ہے بنسبت مرد کے. تو یہ چیزیں اسسٹ کرتی ہیں، یہ مدد کرتی ہیں رشتہ داریوں کو نبھانے میں، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں نا. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں، یعنی عورت کو جو جذبات دیے گئے ہیں اور عورت کو جو محبت و الفت کی ایکسٹرا صلاحیت دی گئی ہے. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یا معلوم ہونا چاہیے کہ نعمت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن بندے کا کیا کام ہوتا ہے یا بندی کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بندے اور بندی کا کام ہوتا ہے، یعنی ہمارا اور آپ کا. ٹھیک ہے، تو جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمارے لیے بڑھا دیتے ہیں. تو اب بڑھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعمت بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے بھائی کھانے پینے کی نعمت کا شکریہ ادا کریں تو کھانا پینا بڑھا دیتے ہیں. تو اب کھانا پینا بڑھا دیتے ہیں تو ہم کھا کھا کر کے موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. رائٹ، کھانا بڑھا دیا، ہم کھا کھا کے موٹے ہو گئے. یہ مقصد ہے بڑھانے کا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے بڑھانے کا. نہیں، کیا مطلب ہے پھر؟ نعمت بڑھا دیتے ہیں تو خالی اس کی کوانٹیٹی انکریز کر دیتے ہیں. تو پھر کوانٹیٹی انکریز کر دیں گے تو پھر تو بھائی کھا کھا کر کے اور طبیعت خراب ہوگی. ٹھیک ہے، صحت خراب ہوگی. تو کوانٹیٹی انکریز کرنا اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمارے لیے کیا بنا دیتے ہیں؟ اس کی کوانٹیٹی انکریز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کی کوانٹیٹی انکریز نہیں کرتے بلکہ اس کی کوالٹی انکریز کر دیتے ہیں. رائٹ، اس کی کوالٹی انکریز کر دیتے ہیں. کیا مطلب کوالٹی انکریز کر دیتے ہیں؟ اس کو ہمارے لیے زیادہ نفع بخش بنا دیتے ہیں، اس کو ہمارے لیے زیادہ بینیفیشل بنا دیتے ہیں، زیادہ انفع بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انفع بنا دیتے ہیں، بینیفیشل بنا دیتے ہیں، زیادہ فائدہ مند بنا دیتے ہیں جب ہم نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمارے لیے انفع بنا دیتے ہیں، زیادہ فائدہ مند بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات کیا ہے جو کہ اس سے بھی پہلے اپلائی ہوتی ہے؟ وہ کیا ہے کہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ नेमत का शुक्र अदा करने का मतलब क्या है? तो ये अगर हम आपसे पूछ लें, राइट, पहली चीज का तो जवाब हमने खुद ही दे दिया कि लाजीदन्नकुम का मतलब क्या है, कि नेमत को हमारे लिए अनफा बना देते हैं, यानी ज्यादा बेनिफिशियल, फायदेमंद, राइट। अब दूसरा सवाल ये है कि शुक्र अदा करने का क्या मतलब है, ये आप बता दें अगर तो अच्छा हो। शुक्र अदा करने का क्या मतलब है, नेमत का शुक्र अदा करना? जी नेमत का शुक्र अदा करने का मतलब क्या है कि हम डिजर्व नहीं करते पर अल्लाह ने हमें दिया है। देखिए बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है लेकिन सही जवाब नहीं दिया है, ठीक है? क्यों? इसलिए कि यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हो रही है, ठीक है? हम यहाँ पर किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में किसी दूसरे सियाक व सबाक में बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो जवाब है ये दूसरे सियाक व सबाक का जवाब है, यहाँ का जवाब नहीं है। सही जगह इस्तेमाल करना, ठीक है? चलिए ये एक जवाब बेहतर जवाब है, सही जगह इस नेमत को इस्तेमाल करना, उसका सही इस्तेमाल करना, अमर और नहीं के मुताबिक इस्तेमाल करना, ठीक है? माशाल्लाह, हक शनासी, उसके साथ अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ना, शिकायतें ना करना, ठीक है? ये अच्छे जवाब हैं लेकिन इनको हम सही अभी भी नहीं कह सकते क्योंकि ये मुकम्मल जवाब नहीं है, ठीक है? ये अच्छे जवाब हैं लेकिन सही होने से थोड़े से कम रह गए हैं क्योंकि ये मुकम्मल जवाब नहीं है। मुकम्मल जवाब ये होगा कि उस नेमत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना का तरीका सीख करके फिर उसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना, ठीक है? उस नेमत को हमने कैसे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना है इसको सीखना, इसका इल्म हासिल करना, ठीक है? और फिर उस इल्म के मुताबिक अमल करना, ये मुकम्मल जवाब होगा, ठीक है? तो सही जगह इस्तेमाल करना, तो भाई इसमें आप अगर अब एज्यूम कर रहे हैं कि हमें पता है कि सही जगह क्या होती है, ठीक है, ये तो एक अजम्पशन है ना, ये तो एक गुमान है कि हमें पता है सही जगह क्या होती है। व्हाट इफ हमें पता ही नहीं है कि सही जगह क्या होती है, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली आजकल यही मामला है कि हमें पता ही नहीं होता कि सही जगह क्या है, सही तरीका क्या है, अमर और नहीं क्या है, अल्लाह ताला के अवामिर और अल्लाह ताला की मनहियात क्या है, हमें यही नहीं पता। तो जब पता ही नहीं है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको अमर और नहीं के मुताबिक, ठीक है? तो ये गुमान ना रखा करें कि या हमें नहीं रखना चाहिए कि हमें पता है अब खाली अमल करना है, बल्कि हमें पता ही नहीं है तो इल्म सीखना है। अब जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि क्लास लेने का मकसद ही ये होता है कि हम सीखें, वरना क्लास लेने की जरूरत क्या है, ठीक है? ठीक, सीधा सीधा अजम्पशन की बुनियाद पर अमल करना शुरू कर दें तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने क्लास लेने की यानी सीखने की तौफीक अता फरमाई ताकि हम सही तरीका सीखें। जब सही तरीका हम सीख लेंगे तो अब करना क्या है, अमल करना है उसके ऊपर। इसी वजह से दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरजुकना तिबाअ, के अल्लाह मुझे आप हक का सही इल्म अता फरमा दीजिए कि वाकई हक क्या है, अरिनल हक का मुझे दिखा दीजिए हक क्या है। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो गई बात बल्कि आगे भी दुआ मांगते हैं, वरजुकना तिबा, यानी मुझे उस हक पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दीजिए। वो अरिनल बातिला बातिलों कि गलत तरीका क्या है, उसका भी मुझे समझ में आ जाए कि मैं कहीं गलत तो नहीं काम कर रही, वरजुकना इज्तिनाबा, और उससे बचने की भी तौफीक अता फरमा दीजिए, ठीक है? तो इल्म जो है वो हासिल करना ये सबसे पहला काम है और फिर उसके बाद उस पर अमल करना ये दूसरा काम है। बगैर इल्म के अमल नहीं कर सकते और इल्म करके बैठ इल्म हासिल करके बैठ नहीं सकते बल्कि उसके ऊपर अमल करना है, क्योंकि इल्म हासिल करने का मकसद ही अमल करना होता है। अब ये और बात है कि इस इल्म तो हम बहुत सारी चीजों का हासिल कर लेते हैं, उमूमी तरह से, उमूमी नौयत में हम हर किस्म का इल्म हासिल करते हैं, हर किस्म का तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर लेते हैं किसी क्लास के अंदर, बहुत सारी बातें हम सीख लेते हैं, लेकिन अमल हम किस चीज पे करते हैं? सिर्फ उस चीज पर जो कि हमारी जिंदगी में अप्लाई होती है, राइट, जिसका ताल्लुक हमसे होता है। हम अमल उसी इल्म पे कर सकते हैं, ठीक है, जिसका हमसे ताल्लुक ही नहीं, हम उस पर कैसे अमल करें? जैसे मिसाल के तौर पर पिछली क्लास जो थी वो पर्दे के ऊपर थी, ठीक है, तो पर्दे में आपको महरम रिश्तों और नामहरम रिश्तों का बताया गया, तो आपने सारा इल्म हासिल कर लिया कि हाँ भाई ये महरम रिश्ते होते हैं, इनसे शरीयत में पर्दा नहीं है, और ये गैर महरम रिश्ते होते हैं, इनसे शरीयत में पर्दा है, ठीक है। इल्म तो आपने हासिल कर लिया सारे महरम सारे गैर महरम का, लेकिन अब आपने करना किससे पर्दा है? तो वो तो खाली आप उन्हीं गैर महरम रिश्तेदारों से पर्दा करेंगे ना जो कि आपकी जिंदगी में हैं, जो आपकी जिंदगी में है ही नहीं, उनसे पर्दा कैसे आप करेंगी, ठीक है। लेकिन इल्म तो आपने सारे गैर महरम रिश्तेदारों का हासिल कर लिया ना, लेकिन अमल सिर्फ उस पे करेंगी जो कि आप पर अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ये तो एक मिसाल दी है, लेकिन यही चीज हर इल्म के ऊपर अप्लाई होती है। बहरहाल तो ये बातें चल रही हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को जो है वो नेमत दी है, जज्बात की, मोहब्बत की, उल्फत की, नरमी की, ठीक है, एहसास की, एक्स्ट्रा नेमतें दी हैं, लेकिन चूंकि इसका शुक्र अदा नहीं कर रही होती है, इस वजह से निभा नहीं पा रही होती है, राइट, इस वजह से रिश्ते निभा नहीं पा रही होती है, क्योंकि शुक्र अदा नहीं कर रही है। अब शुक्र क्यों नहीं अदा कर रही है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या करना है, उसको पता ही नहीं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, इल्म ही नहीं है उसको इस बात का। तो जब इल्म ही नहीं है तो फिर वो उस नेमत को कैसे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो फिर वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उसको इस्तेमाल नहीं करती, तो इससे क्या होता है? नाशुक्री होती है। उम्मीद है कि आप लोग कुछ लिख भी रही होंगी इन चीजों, ठीक है, इसलिए कि बातें तो फिर चलती रहती हैं एक कंटिन्यूटी के अंदर, लेकिन फिर वो जहन में रजिस्टर भी होती हैं कि नहीं होती हैं, उसके लिए साथ जो है ना वो कलम और कागज रखना चाहिए, लिखने की कोशिश भी करनी चाहिए, चाहे उर्दू में लिखें, चाहे रोमन उर्दू में लिखें, चाहे अंग्रेजी में लिखें, या चाहे अपनी किसी मुकामी जुबान में लिखें, लेकिन इन बातों को सफाए कर्तास पर मुंतकिल भी करने की कोशिश साथ साथ करती रहा करें। तो भाई अब जब इल्म ही नहीं है तो फिर उस नेमत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कैसे इस्तेमाल करेगी? जाहिर है उसके खिलाफ ही इस्तेमाल करेगी, जब खिलाफ इस्तेमाल करेगी तो ये नाशुक्री होगी, और जब नाशुक्री होगी तो फिर सजा मिलती है, फिर सजा मिलती है, ठीक है। वला इन कफर तुम इन आदाबी लशदीद, वो नेमत होने के बावजूद फायदामंद नहीं रहती, नुकसानदेह बन जाती है। औरत को अल्लाह ताला ने जज्बात की नेमत अता फरमाई है, अब इस नेमत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेगी तो ये नेमत अल्लाह ताला अनफा नहीं बनाएंगे बल्कि मुगर बना देंगे। मुगर मुगर किस चीज को कहते हैं? नुकसान पहुंचाने वाली चीज, उसको मुगर कहते हैं, गरर पहुंचाने वाली चीज, ठीक है। तो अब ये जज्बात की नेमत जो है ना, ये फायदा पहुंचाने की बजाय ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर, ये नुकसानदेह बन जाती है औरत के लिए, और जब नुकसानदेह बन जाती है तो फिर क्या होता है? रिश्तेदारियां निभ नहीं पाती, रिश्तेदारियां निभ नहीं पाती बल्कि खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बाकायदा एक फ्लो चार्ट बन गया, ये फ्लो चार्ट जो है वो एक इल्म है जो कि अल्लाह ताला ने हमें पहुंचवा दिया है, अभी किसी किसी भी जरिए से पहुंचवा दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो ये वजह बनती है कि ये जो है ना, जो हजरत ने लिखा ना कि औरत की जिंदगी का कमजोर पहलू, तो क्यों कमजोर है भाई? ये इसकी वजह यही है कि शुक्र अदा नहीं करती अल्लाह ताला, ठीक है। तो आसान चीज भी मुश्किल बन जाती है, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल इस पे हम जो है यहाँ तक पहुंच गए थे कि खाविंद के साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन को, सॉरी, ताल्लुक को कैसे अच्छा बनाए, रिश्तेदारी को कैसे अच्छा बनाए। तो उसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन अच्छी बनाए, फिर पिक योर बैटल वाला टॉपिक भी हमने अच्छा खासा पढ़ लिया था। इसमें आप पेज नंबर 130 के ऊपर, 130 के ऊपर हम पढ़ रहे हैं कि औरत अगर खाविंद को कुछ कहना भी चाहती है तो उसके जो अच्छे काम हैं, उसकी नवाजिशात हैं, या उसके जो मोहब्बत के अंदाज हैं, यानी शौहर के जो नवाजिशात हैं, जो मोहब्बत के अंदाज हैं, पहले उनकी तारीफ करे, ठीक है? और तारीफ करने के बाद फिर अपनी बात भी कह दे कि अगर ये हो जाए तो मेरा दिल आपसे और भी खुश हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शौहर की नवाजिशात, ठीक है? शौहर की नवाजशात, नवाजशात का मतलब पता है कि शौहर ने जो इसके ऊपर एहसानात किए हैं, ठीक है, शौहर ने जो इसको बेनिफिट्स पहुंचाए हैं, फायदे पहुंचाए हैं, उसको नवाजशात कहते हैं, ठीक है? अब अगर दो सूरतें हो तो फिर जो है ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है कि नवाजशात की तारीफ करना, नवाजशात की तारीफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? वो क्या कि अगर शौहर साहब जो है उन्होंने कोई नवाजिश करी ही ना हो, ठीक है ना? जैसे कि आमतौर पर मतलब नॉट इन एवरी केस, लेकिन आमतौर पर बीवियों का होता है, भाई तुमने मुझे क्या दिया, ठीक है ना? मुझे तुमसे क्या मिला, दो चीथड़े, राइट? मुझे तुमसे क्या मिला, जो दो लीथड़े, ये हमारे अदब के किसी बयान के अल्फाज हैं, ठीक है? मैं वो उनको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? कि तुमसे मुझे मिला ही क्या है, ठीक है? तो अब कोई नवाजिश मिली ही नहीं तो फिर उसकी तारीफ कैसे करेगी, ठीक है? यानी वाकई शौहर ने इसको कुछ नहीं दिया तो ये अब किस चीज की तारीफ करेगी, ठीक है? या दूसरी सूरत ये है कि शौहर की नवाजशात हैं भी लेकिन इसको तो नजर ही नहीं आती, ये तो उनको समझती नहीं है कि ये नवाजशात हैं, ठीक है? ठीक है, तो अब ये कैसे तारीफ करेगी जब इसको कोई नवाजिश होती तो है लेकिन नजर नहीं आती, अभी कैसे तारीफ करेगी, ठीक है? तो नवाजशात की जो है ना, वो तारीफ करने के लिए पहले नवाजशात को देखना भी पड़ता है ना, तो पहले तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे ऐसा शौहर अता फरमा दें जो कि नवाजिश करने वाला हो, ये अल्लाह ताला तो कर सकते हैं ना, शौहर भी तो अल्लाह ही ने देना है ना भाई, ठीक है? जिस तरह बीवी शौहर को अल्लाह ने देनी है, उसी तरह शौहर भी बीवी को अल्लाह ने देना है, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, ये मांगने का काम है, ये दुआ मांगने वाली लिस्ट में शामिल होना चाहिए गैर शादीशुदा खवातीन के लिए खास तौर पर, ठीक है भाई? अल्लाह से दुआ, ये जो है ना, ये जो शादी है ना, ये जिंदगी का एक इंतहाई अहम तरीन डिसीशन होता है, ठीक है? तो अहम तरीन चीज हो और हम उसके लिए दुआ ना मांगे अल्लाह ताला से, तो फिर क्या करें, क्या क्या बनेगा फिर हमारा, अगर हम अल्लाह से अहम तरीन चीज की दुआ ही ना मांगे, ठीक है? अच्छा, एक और भी मसला है इसके अंदर, नवाजशात के अंदर, ठीक है? वो हमने कहीं से सुना तो उसको हम आपको बयान कर रहे हैं, किसी के लोग अपने अहवाल बयान करते हैं, लोग मशवरा कर लेते हैं, कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, तो उससे फिर हमें और चीजें भी पता चल जाती हैं लोगों के अहवाल वगैरह। तो कहीं हमने सुना कि आजकल लड़कियां तो जाहिर है कॉलेज जाती हैं, डिग्रियां हासिल करती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, ठीक है? तो अब जो है ना, वो बच्ची की उम्र कुछ हो गई है, शादी के करीब की उम्र हो गई है, शादी वाली उम्र हो गई है, तो माँ बाप को अब जो है वो फिक्र हो रही है कि जो उसकी शादी करें। तो अब जो है ना, वो लड़की ने ये कहना शुरू कर दिया है कि आप लोग जो है ना, वो मेरी शादी करना चाहते हैं किसी ऐसे लड़के से जो कि एस्टैब्लिश्ड हो, ठीक है? जो एस्टैब्लिश्ड हो, यानी पढ़ लिख करके मुकम्मल कर चुका हो और जॉब वगैरह कर रहा हो, या अपना बिजनेस सेटल कर चुका हो, ठीक है, सेटअप कर चुका हो, अच्छी उसकी एक स्टेबल लाइफ हो चुकी हो, उसको एस्टैब्लिश्ड लड़का कहते हैं हमारे, ठीक है? तो आप लोग जो है ना, वो मेरी शादी किसी एस्टैब्लिश्ड बंदे से करना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहती किसी एस्टैब्लिश्ड बंदे से शादी, मैं तो करना चाहती हूँ किसी ऐसे बंदे से जो कि स्ट्रगलिंग हो, स्ट्रगलिंग यानी जो कि ना अपनी जिंदगी अभी बनाने की मेहनत में लगा हुआ, ठीक है? यानी बना चुका ना हो, यानी भाई मेहनत में तो वैसे तो सभी लगे रहते हैं, मरते दम तक आपने मेहनत करनी होती है। वाबुद रब्बका हत्ता याति अकल यकीन, का यही तो मतलब है, मेहनत करते रहो जब तक मौत ना आ जाए तुम्हें। अल्लाह ताला ये हुक्म फरमा रहे हैं हमें, ठीक है। तो मेहनत तो हर यानी जिंदगी के आखिर तक चलती रहती है, लेकिन हमारे शादी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ना, वो इसको समझा जाता है कि जी स्ट्रगलिंग का मतलब ये है कि अभी इसको जॉब वॉब नहीं लगी है, अभी इसका बिजनेस सेटअप नहीं हुआ है, तो अभी जो है ना ये पढ़ाई की ही उम्र में है, या जो है वो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, ठीक है। जब इसकी जॉब शॉब लग जाएगी, तनख्वाह वनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी, तब इसको कहा जाएगा कि ये इस्टेब्लिश बंदा हो गया है। तो माँ बाप जो है वो अपने बच्चे की शादी इस्टेब्लिश बंदे से करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे कहती है नहीं मुझे तो स्ट्रगलिंग से करना है, ठीक है। तो अब बताएं, ये आप बताएंगी कि वॉट इज गुड विद इट एंड वॉट इज रॉन्ग विद इट, ठीक है। इसके अंदर क्या आपको कोई मनफी बात नजर आ रही है, कोई नुकसानदेह बात नजर आ रही है स्ट्रगलिंग बंदे के साथ शादी करने में, या अगर आपको अच्छी बात नजर आ रही है तो अच्छी बात भी बता दो। जब तक हम ये मैसेज पढ़ते हैं, इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, औरत इस तरह भी कहती है कि जो मेरे घर वाले करते थे वही तुम भी कर रहे, लाइक खाना कपड़ा। हाँ ठीक है, वो तो जी खाना कपड़ा तो मुझे मेरे अब्बा भी दे देते थे, तो शौहर भी खाना कपड़ा दे देता है, तो वो फिर कहती है तुमने मुझे क्या दिया, खाना कपड़ा तो अब्बा भी दे देते थे। शौहर आगे से कहेगा कि भाई वो तुम्हारे अब्बा थे, ठीक है, मैं तुम्हारा अब्बा कोई थोड़ी हूं, तो मैं तो निकाह की वजह से तुम्हें ये चीजें दे रहा हूँ, और उसके अलावा भी खैर खाली खाना कपड़ा तो ना अब्बा ने, अब्बा भी खाली खाना कपड़ा तो नहीं देते थे ना, शौहर भी जो है वो खाली खाना कपड़ा। खैर चलें आगे बताएं, ठीक है। ये जो स्ट्रगलिंग और एस्टेब्लिश वाला एक तनाजा खड़ा हुआ हुआ है, तो व्हाट इज गुड अबाउट इट एंड व्हाट इज बैड अबाउट इट, इसके बारे में अच्छा क्या है, इसके बारे में बुरा क्या है, कि मैंने तो स्ट्रगलिंग बंदे से शादी करनी, तो स्ट्रगलिंग का मतलब उम्मीद समझ में आ गया हो, ठीक है, और एस्टैब्लिश का मतलब भी समझ में आ गया हो, तो क्या मसला है फिर इसके अंदर, क्या हो गया स्क्रीन। जी तो क्या मसला है इसके अंदर, स्ट्रगलिंग बंदे के साथ शादी करना या स्टैब्लिश बंदे के साथ शादी करना। आजकल के तनाजुर में, आजकल के कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे देखा जा सकता है, तो उन्होंने लिखा है कि दिस कैन ऑल्सो बी सीन, अच्छा अच्छा नहीं नेक गर्ल्स में से बिकॉज़ शी प्रेस दी नॉर्दन आल्सो बिकॉज़ बोथ विल डेवलप अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अच्छा उन्होंने पॉजिटिव बात ये लिखी है, स्ट्रगलिंग बंदे के साथ शादी करने में पॉजिटिव बात ये लिखी है कि फिर जो है ना मियाँ बीवी दोनों एक साथ ग्रो करेंगे, एक साथ ग्रो करेंगे, या हम क्या मतलब ग्रो करेंगे, यानी स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, इनका मतलब ये है कि स्पिरिचुअली एक साथ ग्रो करेंगे, और जो एस्टैब्लिश लोग होते हैं वो नेक नहीं होते हैं, पता नहीं अनएस्टैब्लिश लोग नेक होते हैं। चलिए ये तो एक पॉजिटिव चीज, चले आपने एक एक एंगल अपना बता दिया, ठीक है, बाकी कोई कोई एंगल, स्ट्रगलिंग पर्सन विल टेक हर एज नेमत वाइल एस्टैब्लिश पर्सन विल स्क्रूटिनाइज हर, सही है, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि जो एस्टैब्लिश बंदा होगा ना वो इसको इसके ऊपर तनकीद करेगा, और जो स्ट्रगलिंग बंदा होगा वो उसको नेमत के तौर पर लेगा, ठीक है। तो ये लड़की की साइड से एक रुख है इसको देखने का, जो एस्टैब्लिश बंदा होगा वो उसके ऊपर क्रिटिकल होगा, और जो स्ट्रगलिंग बंदा होगा वो उसकी कदरदानी करेगा। अच्छा और क्या लिखा, हस्बैंड के साथ देने के लिए बीवी बाद में जॉब करेगी, हस्बैंड का साथ देने के लिए बीवी बाद में जॉब करेगी, जिससे पूरा निजाम खराब हो जाएगा, घर डिस्टर्ब होगा। तो जो स्ट्रगलिंग बंदा होगा तो वो चूंकि एस्टैब्लिश नहीं होगा, तो इस वजह से बीवी जो है वो उसका साथ देगी, उसके साथ जॉब करेगी। जब वो जॉब करेगी तो फिर इन्होंने नेगेटिव पहलू उसका लिखा है कि बीवी को भी जॉब करनी पड़ेगी स्टैब्लिश होने के लिए, ठीक है, तो फिर घर का निजाम खराब होगा। लेकिन इसका इसका जवाब ये दिया जा सकता है कि भाई अभी वो स्ट्रगलिंग है ना, तो बाद में तो स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है, 5-10 साल के बाद इंशाल्लाह, जैसे बाकी लोग स्टैब्लिश हो जाते हैं उसी तरह ये भी जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर बीवी को जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल ये भी एक चले एक पहलू है, सही है, स्ट्रगलिंग बंदे के साथ तो शादी हो जाएगी लेकिन बाद में ना शुक्री स्टार्ट हो जाएगी। स्ट्रगलिंग बंदे के साथ शादी तो हो जाएगी, निकाह तो हो जाएगा, लेकिन बाद में ना शुक्री स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, क्यों ना शुक्री स्टार्ट हो जाएगी? अच्छा, अवॉइडिंग फाइनेंशियली इज अ हस्बैंड्स, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली इज अ हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। शी माइट बी थिंकिंग लाइक दिस बिकॉज शी वॉन्ट्स टू प्रोवाइड एंड हैव द अपर हैंड इन द मैरिज, सिंस द वन दैट फाइनेंशियली प्रोवाइड्स ऑल्सो हैज द अपर हैंड, बट अल्लाह हैज मेड अ मैन कवाम ओवर ए वुमन। ठीक है, तो अब ये जो उन्होंने जवाब दिया है, तो इस जवाब का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक जो है ना वो पिछली क्लास के साथ भी, अगर आप लोगों को याद हो कि पिछले बुध को जो क्लास हुई थी तो उसके अंदर पूरी क्लास में जो है ना वो एक ही मेरे ख्याल में बात चली थी, अल्लाह ताला की बनाई हुई तरतीब। याद है किसी को? अल्लाह ताला की बनाई हुई तरतीब, ठीक है, और उसमें आपको बताया था कि अगरचे के सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं, दो आंखें एक नाक, मर्द की भी होती है औरत की भी होती है, राइट, और एक ही जुबान जैसी भी होती है लेकिन एक ही होती है दोनों में, ठीक है, दो हाथ दो पैर, राइट, थोड़ा बहुत फर्क के अलावा बाकी सब एक जैसा होता है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को बराबर नहीं बनाया, ठीक है, नेकी तकवा की बुनियाद पर, इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, नेकी तकवा की बुनियाद पर अफजलियत और अकरमियत और नीचे का मुकाम रखा है, ठीक है, इल्म की बुनियाद पर, कौन सी, बल्कि वो आयत भी बाद में नजर से गुजरी थी तो मुझे याद आया कि वो क्लास में तो उसका जिक्र आ जाता तो और अच्छा होता। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, उस आयत के कुछ अल्फाज ये हैं, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और वो लोग जिनको इल्म दिया गया दरजात, ठीक है, तो इस आयत का मफहूम भी क्या होता है कि जो इल्म वाले होते हैं वो ऊपर के दर्जे में अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और जो कम इल्म वाले होते हैं या ला इल्म होते हैं वो दर्जे में नीचे होते हैं, ठीक है। आलिम की चार आंखें नहीं होती, तीन पैर नहीं होते, ठीक है, लेकिन दर्जा अल्लाह ने बना दिया, इल्म वाले का ऊपर दर्जा, बेइल्म वाले का नीचे दर्जा। उसी तरीके से मर्द और औरत में भी प्रेटी मच सेम ही अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन अर्रिजालु कवामून अला निसा, ठीक है, अल्लाह ताला ने तो ये तरतीब बनाई है, लेकिन जब, अच्छा, इसमें भी उसकी रीजन भी यही है ना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली, ठीक है, अब जो स्ट्रगलिंग बंदा है तो वो तो फाइनेंशियली प्रोवाइड नहीं कर पाएगा ना, बीवी भी जो है उसके साथ मिलकर काम करेगी या जो, या नहीं काम करेगी फिर भी वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकली जो है ना फिर वो जो शौहर का एक अपर हैंड होता है ना जो कि अल्लाह ने बनाया, ठीक है, जो एक अपर पोजिशन होती है वो पूरी तरीके से मुतासर होती है, ठीक है, वो मुतासर होती है, और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि बीवी जो होते हैं ना उसको फिर कि मैं क्या, मैं क्यों तुम्हारी मानूं, मैं क्यों तुम्हारी रिस्पेक्ट करूं, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है इसके अंदर, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है इसके अंदर, ठीक है, तो इसकी वजह से होती है फिर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कुछ लोग जो होते हैं जो एक्स्ट्रा सबर वाले होते हैं वो तो इसके अंदर बर्दाश्त कर जाते हैं और अपने मकाम को जो अल्लाह ने बनाया हुआ उसको याद रखते हैं, लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं वो फिर इसके अंदर मसला हो जाता है, ठीक है, फिर वो नहीं अपना मकाम याद रख पाते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ मकाम याद नहीं रहता है, शैतान भुला देता है, नफ्स भुला देता है, फिर इंसान जो होता है वो, तो ये आजकल जो एम्पावरमेंट का जो नाम दिया गया है ना, औरतों की एम्पावरमेंट, यानी उनको मर्दों की तरह से बना दो, एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि औरत को अच्छी औरत बना दो, औरत को जो है वो नेक, परहेजगार और जो इनमें नाफे उसके लिए है उससे उसको एम्पावर करके ज्यादा अच्छी नेक मुत्तकी परहेजगार इल्म वाली, इल्म नाफे वाली औरत बना दो, बल्कि नहीं बल्कि उसको मर्द की तरह बना दो। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है औरत को मर्द की तरह बना दो, ठीक है? तो जब वो मर्द की तरह बन जाएगी तो फिर वो किसी मर्द से जब शादी करेगी तो फिर तो वो क्या होगा, घर के अंदर दो मर्द रहते होंगे, ठीक है ना? एक जो है वो नजर आने वाला मर्द होगा और दूसरी जो है ना वो बाहर से तो वो मर्द नजर नहीं आएगी या बॉडीली मर्द नजर नहीं आएगी, लेकिन हरकतें सारी की सारी मर्द वाली होंगी। तो अब जब दो मर्द आपस में एक साथ रहने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको पता है क्या होगा, फिर वो शादी नहीं, वो निकाह नहीं होगा, बल्कि वो कुछ और होगा, वो पार्टनरशिप टाइप की कोई चीज होगी या ठीक इस किस्म की कोई चीज होगी, ठीक है? उसी तरीके से जाहिर है जब मर्द औरत बन जाते हैं तो अब जो है वो जब शादी होती है तो फिर वो दो औरतें जब एक घर में रहेंगी तो फिर आपको पता है क्या होता है ना, जब और दो औरतें एक घर में शेयरिंग मोड में रह रही होती हैं तो फिर आपको सबको पता है कि क्या होता है उसके बाद। तो उसी तरह से मर्द जब औरत बन जाते हैं ना, ठीक है, तो फिर वो भी यही होता है मसला, सही है? तो ना तो औरत को मर्द बनाने की कोशिश करनी है क्योंकि ये अल्लाह के निजाम के खिलाफ जाना है, और ना औरत को मर्द बनाने की कोशिश करनी है क्योंकि ये भी अल्लाह के निजाम के खिलाफ जाना है। हमारा दीन कहता है कि जिसको अल्लाह ने जैसा बनाया है ना उसको उसी कैपेसिटी के अंदर इम्प्रूव करने का की मेहनत करनी है, उसी कैपेसिटी के अंदर, उसी रोल के अंदर जो अल्लाह ने उसको दिया है, ठीक है, उसमें उसको फायदेमंद बनने की कोशिश करनी है। इसके ऊपर उसको जजा मिलेगी और इस पर ना करने के ऊपर उसको सजा मिलेगी। बहरहाल तो फरमाते हैं कि उसकी नवाजशात, तो भाई जो स्ट्रगलिंग बंदा होगा तो उसकी तो नवाजशात नहीं होंगी ना इसके ऊपर, ठीक है? तो उसके वो क्या कर, किस चीज की तारीफ करेगी फिर वो उसके, ठीक है? चंद दिन की वो होती है हनीमून पीरियड, हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है इस तरह के स्ट्रगलिंग किस्म के जो होते हैं ना कि शौक, तो वो हनीमून पीरियड तक तो वो रहते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद फिर जो है वो दाल क्या कहते हैं दाल रोटी का हिसाब नजर आना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ना वो तारीफ शारीफ कोई नहीं होती, जाहिर है। तो कहते हैं कि उसके जो मोहब्बत के अंदाज हैं पहले उनकी तारीफ करे और तारीफ करने के बाद फिर अपनी बात भी कह दे, ठीक है? अपने आप को ऊंचा समझती होगी, बड़ा समझती होगी, मैं भी प्रोवाइड करती हूँ, मैं भी जो है वो घर को, एक शोल्डर मेरा भी है, दूसरा शोल्डर तुम्हारा है, तो एक शोल्डर मेरा भी है, तो फिर तारीफ किधर से, ठीक है? तो ये ग्रोइंग टुगेदर वाली जो बातें हैं ना फिर उसके बाद सारी खत्म हो जाती हैं, और वो भी नेमत वाली जो बात है ना, स्ट्रगलिंग पर्सन विल टेक हर एज नेमत, वो नेमत नहीं, विल टेक हर एज हर बॉस, स्ट्रगलिंग पर्सन विल टेक हर एज हिज बॉस, ठीक है? और ये जो है ना वो अपने आप को बॉस समझ रही होगी, फिर अल्लाह की बनाई हुई तरतीब उल्टी हो जाएगी, जब तरतीब उल्टी हो जाएगी तो फिर कर लो जो करना है। वो लजीन हो तो लल मदरजा वल्लाह, नहीं तो पीछे वाली आपने हिस्सा बताना था इस आयत का, तब बात पूरी होती है आपने अगली आयत बता दें। खैर, तो कहते हैं कि जी फिर अपनी बात भी कहते हैं कि अगर ये हो जाए तो और भी खुश हो जाएगा, तो इस तरह की बातें तो वही औरत करेगी ना जो अपने आप को नीचा समझती हो, ठीक है ना? आजकल तो ऐसी बहुत मुश्किल से ही मिलती हैं जो कि अपने आप को नीचे समझती हैं, क्योंकि अल्लाह ने तरतीब बनाई थी, शैतान ने तरतीब उलट दी है, अब पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह की बनाई हुई तरतीब के खिलाफ चलने की कोशिश कर रही है। तो फिर आज की औरतें ये नहीं कहती कि मेरा दिल आपसे और खुश हो जाएगा, ये पुरानी बातें लगती हैं आजकल बिल्कुल, लेकिन भाई करना तो यही है, अगर इत्मीनान चाहते हो अपने दिल के अंदर और अपनी जिंदगी के अंदर तो अल्लाह की बनाई हुई तरतीब को करना पड़ेगा, नहीं तो बेइत्मीनान ही रहोगी सारी जिंदगी और मरने के बाद भी इत्मीनान नहीं मिलेगा, ये तो उसूल है, ये तो नहीं बदलता। पिछली क्लास में भी बात हो रही थी, मंडे के दरस कुरान में भी यही बात हो रही, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, मुस्बत तनकीद, यानी पहले तारीफ करें अच्छी बातों की, फिर उसके बाद फिर कोई गलती कोताही है तो उसके ऊपर फिर उसकी इसलाह करने की अच्छे अंदाज में कोशिश करें। अक्सर औरतें चूंकि ये नहीं कर पाती इसलिए अपने खाविंद के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं बना पाती, ठीक है? तो नहीं कर पाती या तो बिल्कुल ही जाहिल होती हैं, कुछ भी नहीं सीखा होता, या वो चीजें सीखी होती हैं या उनके अम्मा अब्बा ने उसको सिखाई होती हैं जो के उसको मर्द बनाने की के लिए ज्यादा कवाम बनाती हैं, जो उसको मर्द बनाती हैं वो उसके अम्मा बन उसको सिखाई होती हैं, जो उसको अच्छी औरत बनाए वो उसके अम्मा बन उसको नहीं सिखाई हुई होती है। ठीक है, तो उसी वजह से ये होता है कि अक्सर औरतें चूंकि ये नहीं कर पाती इसलिए अपने खाविंद के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं बना पाती। तो दो सूरतें क्या बन गई, ठीक है, दो सूरतें क्या बन गई, एक सूरत तो ये है कि कुछ भी नहीं सीखा, बिल्कुल निमट जाहिल, ठीक है, इसी वजह से बिल्कुल आप जो ऐसे घरानों में देखें जहां पर के मारे बांधे का कुछ मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, या कोई और बीकॉम कर लिया, बीएससी कर लिया, ठीक है, लेकिन जिंदगी के उलूम बिल्कुल भी हासिल नहीं किया, ठीक है, तो वो बिल्कुल निमट जाहिल किस्म की औरत होती है। वहां पर भी यही हो रहा होता है, ठीक है ना, नॉवलें डाइजेस्टें पढ़ने वाली लड़कियां जो होती हैं ना, वहां पर भी यही हो रहा होता है। और जो पीएचडी कर लेती हैं, मास्टर्स कर लेती हैं, और जो है वो बड़े बड़े कोर्सेस कर लेती हैं और करियर ओरिएंटेड हो जाए, वहां पर भी यही हो रहा होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एवरीवेयर, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, लेकिन रूल यही है कि या तो बिल्कुल निमट जाहिल होगी या बिल्कुल जो है ना वो अल्लामा अफ्तातून होगी, दोनों जगहों पर यही हो रहा होगा, ये रूल है। ठीक है, तो फिर तीसरा रूल क्या है, जो कि उलूम नाफे सीखेगी, दुनिया की भी जो उलूम जो उसकी जरूरत है वो भी सीखेगी, दीन के उलूम जो उसकी जरूरत है वो भी सीखेगी, वहां पे फिर ये नहीं होता, ठीक है, शैतान रोकता है ऐसा इल्म हासिल करने से, शयातीन जो होते हैं वो रोकते हैं, ठीक है, ऐसा इल्म हासिल करने से शयातीन रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अल्लाह की ये बंदी जो है वो सुकून की जिंदगी गुजारे। अगर पूछना हो कि सहाबियात अपने खाविंदों के साथ कैसे मोहब्बत का ताल्लुक रखती थी, तो सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम की इतनी तारीफ करती थी, इतनी तारीफ करती थी कि इंसान हैरान होता है, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ कौन नहीं करता सिवाय आप के दुश्मनों के, सभी आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन उस वक्त तो वो नबी अलैहिस्सलाम की बीवी थी ना, तो हम भी बहुत सारे मर्दों के साथ जब बात होती है ना उनके घर के अहवाल के बारे में, तो हम कहते हैं भाई बीवी तो बीवी होती है, ठीक है, तो बीवी के अपने अपने एक स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, बहुत अपने तौर तरीके होते हैं, जब वो बीवी बनती है तो फिर वो वैसी होती है। कहने का मकसद यह है कि भाई आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बेशक उम्मती भी थी लेकिन बीवी भी थी, ठीक है, तो ये नहीं हुआ कि जी मैं तो बीवी हूं मैं क्यों करूं आपकी तारीफ, मैं तो बीवी हूं मैं नहीं करूंगी, बाकी सारी दुनिया करती रहे आपकी तारीफ मैं नहीं करूंगी आपकी तारीफ क्योंकि मैं बीवी हूं, भाई ऐसा उन्होंने नहीं किया। कर सकती थी क्या मतलब, कर सकती थी मतलब ये नहीं कि उनको कोई इजाजत थी करने की, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो इस तरह बाकी इंसान जो है वो कल करते हैं ना, भाई नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी तो बीवी थी ना, और नूह अलैहिस्सलाम भी तो पैगंबर ही थे ना, राइट, और उनकी बीवी भी तो पैगंबर की बीवी थी ना, लेकिन उसने तो नहीं करी ना नूह अलैहिस्सलाम की कदर, उसने तो नहीं करी करी नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ, लूत अलैहिस्सलाम भी तो अल्लाह के पैगंबर थे ना, राइट, और उनकी बीवी भी तो पैगंबर की बीवी थी ना, लेकिन उन्होंने तो नहीं करी लूत अलैहिस्सलाम की तारीफ, ठीक है, तो ऑप्शन तो होता है इंसान के पास, ऑप्शन तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भी था कि नहीं करती तारीफ, कि मैं बीवी हूं मैं क्यों करूं तुम्हारी तारीफ, मैं क्यों करूं आपकी तारीफ, लेकिन उन्होंने किस ऑप्शन को अडॉप्ट किया, तारीफ करने वाले ऑप्शन को अडॉप्ट किया, तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बन गई, उम्महातुल मोमिनीन बन गई, ना करती तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की तरह का हशर होता उनके साथ, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की तरह का हशर होता उनके साथ, ठीक है, तो मिलता है तो भाई सही ऑप्शन को चूज करने पर मिलता है ना, और नहीं मिलता तो सही ऑप्शन को चूज ना करने के ऊपर नहीं मिलता, ठीक है, ये तो हम सबका मामला यही है ना, सिर्फ आयशा सिद्दीका का ही मामला तो नहीं था, हम सबका ही मामला है। तो कैसे करती थी तारीफ के इंसान हैरान होता है, तो उनके अशआर हैं, लना शमसुन वलिल आफाक शमसुन, लना शमसुन के एक हमारे लिए एक सूरज है और एक सूरज आसमान के लिए है, ठीक है, एक आसमान के लिए है सूरज और एक मेरा सूरज है, हमारा सूरज है, ठीक है। फर्क यह है कि तेरा सूरज फजर के बाद तुलू होता है आसमान, तेरा सूरज फजर के बाद तुलू होता है और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे घर में तुलू होता है। वह शमसी, अच्छा शेर था जिसको मौका मिला तो बाकी शेर भी देख लिया, तो आगे शेर है वह शमसी खैरुम मिन शमसे समाई, मेरा जो सूरज है ना वो आसमान के सूरज से ज्यादा बेहतर है। फइन्न शम्स यतलउ बाद फजरिन, क्योंकि जो आसमान का सूरज है ना वो तो फजर के बाद तुलू होता है, वह शमसी तालउम बादल इशाई, और मेरा सूरज तो मेरे घर में इशा के बाद तुलू होता है। ठीक है, नबी रसूल साहब इशा के बाद घर तशरीफ लाते थे, तो ऐसे जो है ना वो नबी रसूल साहब की तारीफ किया करती थी, यानी खाविंद के आने पर ये तासुरात देना कि वो मेरे सूरज हैं, आकर मेरे घर को रोशन कर देते हैं, ये कितना अजीब कॉन्सेप्ट यानी तसव्वुर है, यानी कैसा कैसा अजीब तरीके से अपने नबी की जो है वो तारीफ करते, अपने शोहर की तारीफ करती थी। फिर उन्होंने कहा कि ए आसमान की सूरज, तेरे लिए तो एक दिन फिना रखी है, तेरी रोशनी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो मेरा सूरज है उसकी रोशनी वक्त के साथ हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी। क्या नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना कि आपका जो है ना वो आने वाला वक्त पिछले वक्त से ज्यादा बेहतर होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी तो बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, बीवी खाविंद की अगर ऐसी तारीफ करे तो फिर खाविंद उसके साथ अच्छा ताल्लुक क्यों नहीं रखेगा, इसलिए उसने जो अच्छा काम किया है उसकी तारीफ भी किया करें। पिक योर बैटल, अगर उसके साथ कोई इख्तलाफी बात है तो उसको आप चुने कि कौन सा नुकता है कि जिसको हासिल करना है, कोई शरी बात है या कोई और ऐसी बात है, फिर उसको हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कोई जेन्युइन शरी कॉज होना चाहिए, तब आप पावन से जो है वो अपना कोई झगड़ा नहीं करें फिर भी, लेकिन उसके साथ जो है वो उसको डिस्कस करें, उसको जो है वो आप अपने दलाइल के जरिए से उसके सामने पेश करें, हर बात पे उसको झगड़ा बना करके बैठ जाना ये बेवकूफी, ये मकसद है इस पूरे टॉपिक का, पिक योर बैटल का, कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि बस वो कहते हैं ना कि हमारे उर्दू में एक मुहावरा है, नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देते। ठीक है, यानी हर वक्त जो है ना इंतहाई सेंसिटिव, इंतहाई मूडी, ठीक है, बस जो है ना वो कोई मौका मिला और इधर से नाराज, कोई मौका मिला इधर से गुस्सा, इधर से लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मर्द को भी ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन औरत को बहरहाल नहीं होना चाहिए भाई, बस और क्या, नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक, आगे जो है वो इशू यानी मसले को समझने की कोशिश करें। तीसरी नसीहत क्या कि भाई प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप किसी मसले पर बात कर रही हैं तो अंडरस्टैंड द इशू यानी मसले को पहले समझें। क्या मतलब है इसका कि दूसरे के मौकफ को भी समझने की कोशिश करें, यानी खाविंद की बात हो रही है ना, दूसरे से मुराद यहाँ पर खाविंद है, क्योंकि खाविंद का पॉइंट ऑफ व्यू उसको भी समझने की कोशिश करें। तो उसके समझने के लिए क्या करना पड़ता है, कानों से सुनना पड़ता है और दिमाग से उसको प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, कानों से सुनेंगी तब वो दिमाग में एंटर होगा और फिर दिमाग में उसको सोचेंगी तब वो समझ में आएगा, जो कानों को ही बंद कर ले या अपनी जुबान को इतना जोर से बजाना शुरू कर दे, चलाना शुरू कर दे, तो उसके कानों में फिर बात नहीं जाएगी। लेकिन कानों को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा यानी सलाहियत अता फरमाई है, वो आवाज को पिक कर लेते हैं और यानी हर डायरेक्शन से जो आवाज आ रही होती है उसको कान पिक कर लेते हैं। ठीक है ना, आपकी आंखें ऐसी सलाहियत नहीं रखती हैं। ठीक है, हमारी आंखें जो हैं वो पिछले एक बयान में भी बात हुई थी ना कि 360 डिग्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और 140 डिग्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बस ये हमारी आंखों का रेंज है, इसके बाहर कोई चीज होगी हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती। कानों का मामला ऐसा नहीं है, कान जो है वो आगे से आने वाली आवाज को भी सुनते हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, हत्ता कि हमारे पीछे से आवाज आ रही है कान उसको भी सुनते हैं। कितनी अल्लाह ताला ने कानों की रेंज बढ़ाई है हमारी, राइट। हत्ता कि अभी बच्चों से बात हो रही थी, रास्ते में जो है वो बिजली कड़क रही थी, तो वहां पे बिजली कड़क रही है, पता नहीं कितने मील दूर बिजली, मील नहीं बल्कि हजारों मील दूर शायद कड़क रही है बिजली, बिजली ठीक है, लेकिन उसकी आवाज आ रही है, कानों तक पहुंच रही है, ठीक है, चाहे हम उस तरफ देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन कानों की एक हद है, एक लिमिटेशन है। वो क्या है कि अगर दूसरा शोर चल रहा हो तो फिर कान नहीं पिक कर सकते बात, ठीक है, या पिक भी करेंगे ना तो आपके दिमाग जो है वो उसको समझ नहीं सकता। तो यही मामला जब कभी डिस्कशन हो रही होती है तो उसमें भी होता है कि भाई अगले बंदे को सुनने के लिए खुद खामोश रहना पड़ता है। अगर खुद खामोश नहीं है ना तो जुबान का जो शोर है वो आपके कानों को मफलूज कर देगा, आपकी जुबान का शोर आपके कानों को मफलूज कर देगा, वो मौजूद होने के बावजूद नहीं सुन सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ही शर्त तो इसमें यह है कि खुद खामोश रहें ताकि अगले बंदे की आवाज जो है ना वो कानों में जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद दिमाग जो है वो उसको इस्तेमाल करें उसको समझने के लिए। ये मतलब है इसका कि दूसरे के मौके को समझने की कोशिश करें। आमतौर पर ये होता है कि औरत जब बात कर रही होती है तो ये खाविंद के जवाब को सुनना पसंद ही नहीं करती, ठीक है, अपनी समझ के दरवाजे बंद कर लेती है, यानी एक वॉल खड़ी कर लेती है, ठीक है। जब ये अपने दरवाजे बंद करके बात कर रही है तो कैसे तवक्कु करती है कि अगले बंदे के दरवाजे खुले होंगे और वो उसकी बात को कबूल कर लेगा। नहीं भाई, जब आप अपने बारे में कोई फैसला कर रही हैं तो दूसरे बारे, दूसरे बंदे के बारे में भी यही फैसला कर लें, आप नहीं सुनना चाहती वो भी नहीं सुनना चाहे, लिहाजा जब बात कर रही हो तो गुस्से को हावी ना होने, ठीक है। देखिए गुस्सा एक ऐसी चीज है, अजीब चीज है वैसे गुस्सा, ठीक है, वो कैसे कि गुस्से जो है ना उससे क्या होता है कि या तो इंसान की जुबान चलनी शुरू हो जाती है गुस्से में, ठीक है, तो जब जुबान चलनी शुरू हो गई तो आपके जो कान है ना वो गोया के मफलूज हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिजिकली बंद तो नहीं होते कान, कान तो खुले हुए हैं लेकिन मफलूज हो गए, अब वो काम नहीं कर सकते अपना। लेकिन दूसरी भी एक सिचुएशन होती है, वो क्या कि अगर आपको गुस्सा आ गया ना, ज्यादा गुस्सा जिसको कहते हैं, ठीक है, तो इवन अगर आपकी जुबान बंद भी है ना, अगर जुबान नहीं भी कुछ कह रही है फिर भी कान मफलूज हो जाता, फिर भी कान मफलूज हो जाता, ठीक है ना, एक गोया के एक अंधेरा छा जाता है और उस जिसके अंदर आंखें भी अच्छी खासी काम करना छोड़ देती हैं, दिमाग भी काम करना छोड़ देता है और कान भी काम करना छोड़ देता है। ये गुस्से के अंदर जो है ना ये सलाहियत होती है कि वो फिर इंसान को शट ऑफ कर देता है, ठीक है, अकल भी शट ऑफ हो जाती है, कान और आंखें दोनों शट ऑफ हो जाती है। ये गुस्से की वो शक्ल है जिसको के इंतहाई गुस्से वाली शक्ल कहा जाता है, ठीक है। तो गुस्से को हावी ना होने दें, अब ये कोई आसान काम है गुस्से को हावी ना होने दें भाई, इसके लिए तो अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगनी पड़ती हैं कि अल्लाह मेरे गुस्से को काबू में ले, ठीक है, दुआएं मांगनी होती हैं अल्लाह ताला से और इसको काबू करने की दवाएं करें। दवाएं क्या होती हैं जो मशायख मुराकबा बताते हैं ना, वो दवा होती है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से दवाएं हैं गुस्से को काबू करने की, कि भाई ठंडा पानी पी लो, जगह बदल के दूसरी जगह पे चला जाओ, नबी अलैहिस्सलाम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, खड़े हुए हुए हो तो गुस्सा आए तो बैठ जाओ, बैठे हुए गुस्सा आ जाए तो लेट जाओ, ये सारी जो है ना ये दवाएं हैं गुस्से को काबू करने की, लेकिन दुआ दवाओं से पहले होती है और फिर उसके बाद दवाएं करनी होती है, ठीक है, तब जो है ना गुस्से को हावी ना होने दें वाली नसीहत पे अमल हो सकेगा, वरना नहीं हो सकता, कोई ना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर बातचीत के दौरान गुस्सा हावी हो जाए तो काम खराब हो जाए, तो फाइट राइट, डोंट लेट एंगर टेक ओवर, ठीक है, यानी गुस्से में जो है ना वो झगड़ने की कोशिश ना करें या बहस मुबाइसे की कोशिश ना करें, गुस्से के बगैर तो होता है ना फिर वो फाइट राइट कहला, यानी दुरुस्त मुकाबला करना। तो ये एक और हमने आज पॉइंट पढ़ लिया। अगला पॉइंट जो है, खाविंद की राय का एहतराम करें। बस ये चूंकि बहुत छोटा सा है तो वो पढ़ के आज की क्लास खत्म करते हैं। खाविंद की राय का एहतराम करें, तो एक और बात है, रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, उसकी राय। खाविंद की राय का एहतराम करें। आप अगर कोई बात कर रही हैं और उसमें खाविंद ने अपनी कोई राय दे दी, उनकी राय का एहतराम करें। एहतराम करने का लफ्ज जो है ना, ये बड़ा ब्रॉड किस्म का लफ्ज। यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी राय तस्लीम कर लें, मान लें, ठीक है। तो क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि उसको आउटराइट रिजेक्ट ना करें। एहतराम करने का मतलब ये होता है कि उसको सुने बगैर, गौर किए बगैर बस उसको रिजेक्ट कर, ठीक है। ये बद एहतराम, ठीक है। तो उसकी बात को सुने, गौर करें, ठीक है। उसको ये पोजीशन दें कि हाँ भाई, इसका भी इस चीज के बारे में कोई इल्म है, कोई समझ है, तो इसकी बात को मुझे गौर करना चाहिए, उसके सुनना चाहिए, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो क्या टॉपिक है, ये भी बहुत अहम है इसके अंदर, कि किस टॉपिक पे उसने राय दी। तो ये अब ये डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर खाना कैसे बनाना है, ठीक है। अब खाविंद साहब जो हैं, अगर बहुत कोई अच्छे किस्म के शेफ हैं, कोई बड़े जैसे कुछ लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली, पूरा पूरा खाना बनाना उनका शौक होता है, और वो उनके अम्मा बने उनको लगा दिया खाना बनाने के ऊपर, ठीक है। तो वो ना फिर अपना एक उनका एक अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है खाने के बारे में, ठीक है ना। लेकिन उमूमी तौर पर मर्द ऐसे नहीं, उनको खाना वाना बनाना नहीं आता। ऑमलेट बना लेना का मतलब ये नहीं होता कि खाना बनाना आता है। तो अब वो आपके खाने के बारे में आके राय दे रहे हैं, जो आपकी फील्ड है, आपने माशाल्लाह सीखा है, आपका तजुर्बा है उसके अंदर, वो राय दे रहे हैं। तो अब इस राय को जो है ना, वो बिल्कुल ही यानी शटअप कह करके, ना शटअप, माइंड योर बिजनेस, ठीक है ना, दिस इज नॉट योर योर एरिया, इस किस्म के जुमले कह करके यानी बदतमीजी के जरिए से उसको खत्म ना कर दें, सुन लें, ठीक है ना, और या तो जी जी करके के अपना काम करती रहे, या कुछ उनको समझा दें कि भाई ऐसे नहीं होता, ये तो ऐसे होता है, और आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, सही है, मैंने सुन लिया, जो मैं कर सकूंगी वो मैं कर लूंगी इसके अंदर, लेकिन ये काम ऐसे तो होता नहीं है, हमने तो ऐसे नहीं सीखा, ठीक है। तो अच्छे तमीज से बात सुन लें, क्योंकि एरिया उनका नहीं है, एरिया बहरहाल आपका ही, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि मर्दों का एरिया होती है, अल्लाह ताला ने बनाया मर्दों का एरिया, ठीक है। जैसे बाहर के उमूर जो, ठीक है, ये अल्लाह ने बाहर के उमूर जो है वो मर्दों के हवाले किए हैं। सियासत हो गई, ठीक है, दीन की दावत और तबलीग, जिहाद वगैरह, ये अल्लाह ताला ने खास मर्दों के एरिया बनाए, ठीक है ना। तो अब इनके अंदर वो आपको कोई बात बता रहे हैं या समझा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जाहिर है आप उनके साथ यानी खाली ये नहीं कि बस उनको शटअप आपने नहीं कहा तो बहुत अच्छी बात हो गई, बल्कि इसमें उनकी बात को आपको बहुत ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं का एरिया है। अब आप जो है वो, अगर आपने अपनी जिंदगी जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर और करियर के अंदर लगा दी है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि अब बाहर के इश्यूज जो है वो भी आपके एरिया बन गए। भाई आप यानी हम अगर अल्लाह की तरतीब के खिलाफ जाएं तो उससे क्या होता है, क्या अल्लाह की तरतीब बदल जाती है? क्या ख्याल है आपका, अल्लाह की तरतीब बदल जाती है? अल्लाह ताला आपकी वजह से जो है वो अपनी तरतीब बदल देते हैं, दुनिया के मामला को चेंज कर देते हैं? नहीं, अल्लाह ताला तो नहीं चेंज करते अपनी दुनिया के मामला, ठीक है ना। और ना अल्लाह ताला जो है ना वो आपको जो है वो वाकई उठा करके मर्द बना देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। अल्लाह ताला अब औरत जो है वो जो करियर ओरिएंटेड औरत हो गई तो अब उसको अल्लाह ताला मर्द बना देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। बल्कि क्या होता है, हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं खाली, और कुछ नहीं कर रहे होते। अल्लाह की दुनिया नहीं चेंज हो रही होती है, अल्लाह की तरतीब नहीं बदल रही होती है, हमारी अपनी तरतीब खराब हो रही होती है खाली, और कुछ नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप जो है ना, वो मर्द साहब ने अगर खाने बनाने शुरू कर दिए तो वो उसको अपना एरिया समझना शुरू हो जाए, ये उनकी गलती है। ठीक है, उसी तरह औरत साहिबा जो है वो अगर जॉब शॉप करना शुरू हो गई और कुछ उन्होंने बाहर के मामला देख लिए तो समझते हैं कि अब जो है ना मैं दुनिया चला सकती हूँ, अब मैं जो है मुल्क चला सकती हूँ, मैं भी वजीर आजम बन जाऊंगी, मैं भी जो है वो वजीर आला बन जाऊंगी। भाई आपके वजीर आला बनने से जो है ना वो अल्लाह की तरतीब नहीं बदलेगी, आपकी सारा अब बेड़ा गर्क आपका हो रहा है और किसी का नहीं। ठीक है, मतलब आपका बेड़ा गर्क हो रहा है और आप दूसरों का बेड़ा गर्क जितना कर सकती हैं उतना आप कर रही हैं, वरना और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक आखिरी बात सुन करके इसी टॉपिक के ऊपर, कि यहां तक बात को समझ में आई तो फिर आखिरी बात करके आपकी जान छोड़ें, अगर नहीं समझ में आई तो फिर आखिरी बात करने में कोई फायदा नहीं, किसी को कोई इश्काल, किसी को कोई मसला, कि भाई जो उनका एरिया है उसमें तो उनकी राय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ना। ठीक है, लेकिन जो आपके भी एरिया है उनका एरिया नहीं है, उसमें भी अगर कोई वो राय दे रहे हैं तो उसको भी बिल्कुल आउट राइट रिजेक्ट और शट अप। कल कल असल में कोई कह रहा था मुझे कि भाई मुझे मेरी बीवी जो है वो कहती है कि तुम शट अप हो जाओ, इस वजह से ये लफ्ज मुझे ज्यादा याद आ रहा है। ठीक है, तो आवाज सुनने को मिलते हैं तो जाहिर है फिर वो क्लास में वो चीजें याद आती हैं ना। ठीक है, तो ऐसा ना करें। ठीक है, लेकिन आखिरी बात इसमें क्या है वो ये है, क्योंकि आपका माशाल्लाह पर्दे का टॉपिक भी चल रहा है, पिछली क्लास आपकी अल्लाह का हुक्म पर्दा राइट हिजाब उससे रिलेटेड ये बात है, वो ये है कि मर्दों के साथ औरतों का जो इंटरेक्शन होता है ना, ठीक है, अगर आप को आपके शौहर समझा रहे हैं कि भाई ना करें इस तरीके से ना, आप यानी बाहर के मर्दों को आप फरिश्ता मत समझें, ठीक है ना, जो गैर महरम मर्द हैं, जो स्ट्रेंजर मर्द हैं या दूसरे आपके यानी बज़ाहिर आपको वो फरिश्ता नजर आ रहे हैं, बज़ाहिर आपको जो है बड़े नेक नजर आ रहे हैं, लेकिन शौहर आपको ये कह रहा है कि नहीं आप इनसे भी पर्दा भी करें, आप इनसे हया भी करें, आप इनसे बच करके रहें। ठीक है, आप इनसे बच करके रहें, आप इनसे पर्दा करें, ठीक है, बल्कि खाली निकाब वाला पर्दा ना करें बल्कि हया वाला पर्दा करें, यानी जस्ट अवॉइड एनी इंटरेक्शन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, जब बहुत ही जरूरत हो जाए तब तो करनी पड़ेगी इंटरेक्शन, वरना आप अवॉइड करें, इसको हया करना कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना वो आप उनसे ना तो बहस करें कि नहीं आपको क्या पता, ये तो बड़े नेक लोग हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं और ये तो बड़े सही लोग हैं और आपको क्या पता राइट, आप तो खामखा शक्की मिजाज हैं, आप तो शक्की मिजाज हैं, आप तो जो है ना बस एक्सट्रीमिस्ट हैं राइट, आप तो फंडामेंटलिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये हैं और वो हैं। ठीक है ना, आप तो हर एक पे शक करते हैं और आप तो उन पे शक करते हैं, आप तो मुझ पे शक करते हैं, ये वो वगैरह ये सब ना कहें उनको। ठीक है, क्योंकि वो उनका एरिया है और उनको पता है कि ये जो मर्द है ना ये क्या होते हैं, उनको अपना भी पता है कि मैं क्या हूं और उनको दूसरों मर्दों का भी पता है कि ये क्या है। ठीक है ना, औरतों के बारे में किस किस्म के नजरियात रखते हैं, किस किस्म की बातें करते हैं, किस किस्म के कमेंट्स देते हैं, ये मर्द आपस में बैठ करके करते हैं, औरतों को अक्सर पता नहीं होता कि वो क्या करते हैं। देखने में बड़े शरीफ लगेंगे, देखने में बड़े सूट बूट में, टाई शाई में या इवन दाढ़ी टोपी के अंदर नजर आएंगे राइट, और आप समझेंगे कि तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं, संजीदा किस्म के लोग हैं, ये कुछ थोड़ी औरतों के बारे में इस किस्म की बातें करते होंगे, लेकिन आपके शौहर को पता है क्योंकि वो खुद भी मर्द है ना और वो खुद भी जो है वो ऐसे लोगों के साथ उसका गुजारा, चाहे वो ख्वाहिशन यानी चाहते हुए उनके साथ गुजारा करे, चाहे मजबूरन उसको उनके साथ गुजारा करना पड़ रहा है, उसको पता है कि इनकी कैसी निगाह है। ठीक है, तो उसकी राय जो है ना कि आपको यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, उसकी राय को रिजेक्ट ना करें, ठीक है। हमें किसी ने बताया, बल्कि हमारे घर वालों ने किसी और से सुन करके बताया कि बड़े ना डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, बड़े हमें तो बड़े शरीफ और अल्लाह के वली नजर आते हैं ना, तो डॉक्टर लोग, ठीक है, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता वो तो पता नहीं डॉक्टरों को क्या समझती हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि जी ये जो हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स जो है ना वो बैठे होते थे ना अपने कॉमन रूम के अंदर, जिसमें सारे डॉक्टर्स बैठते हैं मेल डॉक्टर्स, ठीक है, तो उनकी किसी डॉक्टर साहब से जो है वो शादी हो गई, ठीक है, तो उनके शौहर डॉक्टर साहब ने फिर इनको बताया कि जो डॉक्टर्स का जो कॉमन रूम है ना जिसमें सारे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, डॉक्टर आपको पता है बताया बड़े संजीदा लोग, बड़े जो है प्रोफेशनल लोग, बड़े तालीम याफ्ता लोग, और पता नहीं क्या, वो हॉस्पिटल में जो दूसरी फीमेल डॉक्टर्स और फीमेल स्टाफ जो होती है ना उसके बारे में ऐसी ऐसी गंदी बातें करते थे, उनके बारे में ऐसे ऐसे गलीज कॉमेंट्स देते थे, यानी देखते थे, पूरा एनालाइज करते थे अपनी गंदी निगाहों से, ठीक है, और फिर उनके ऊपर जो है वो कमेंट्स देते थे और आपस में बात बात करते, हर एक को डिस्कस कर रहे होते थे, ये ऐसी है, ये वैसी है, इसने ये कपड़े पहने, आज ये ऐसी लग रही है, आज वैसी लग रही है, ठीक है। अब जो बिल्कुल ही गई गुजरी होती हैं तो उनको तो ये बातें शायद अच्छी लगे, बिल्कुल ही जो गई गुजरी होती हैं उनको तो अच्छी लगे ये बातें कि अच्छा देखो हमें तो देखने वाले लोग हैं, राइट, लेकिन जो जिनके अंदर थोड़ी बहुत भी शराफत होती है तो उनको तो ये बातें नहीं अच्छी लगेंगी, और ये अच्छी बातें हैं ही नहीं, जाहिर सी बात है। कहने का मकसद ये है कि भाई मर्दों की निगाहें जो है ना ये आपको नहीं पता होती, ये मर्दों को पता होती, ठीक है, तो आपके शौहर अगर आपको रोक रहे हैं ना ज्यादा फ्री होने से, ज्यादा घुसने से, बिला जरूरत जो है वो मर्दों के साथ बातचीत करने से, ठीक है, तो उनको शटअप ना कहें, या दूसरे अल्फाज में भी उनको किसी किस्म का भी शटअप ना कहें, या अंग्रेजी में हो या उर्दू में हो या किसी और जुबान के अंदर हो या किसी और पैराए में हो, ये ना कहें, उनकी राय का एहतराम करें और उनकी बात मान लें, ठीक है ना, वरना दुनियावी एतबार से तो उसे भी नुकसान होगा और अल्लाह ताला तो वैसे ही नाराज होंगे ही, और फिर जब अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर दीन दुनिया दोनों का ही नुकसान होता है, ठीक है, अल्लाह ताला पार समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, वाखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।